نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سیلف گرومنگ کے سلسلے میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے زندگی فیئر نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ جملہ سننا ہوگا زندگی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, اور نعوذ باللہ بعض لوگ تو زندگی کی جگہ اللہ کا نام بھی لے لیتے ہیں. تو کن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی فیئر نہیں, جو لوگ زندگی سے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی زندگی فیئر نہیں ہے, یا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ٹھیک نہیں ہو رہا. زندگی سے روٹھے لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص زندگی کی ہر سانس کو جی بھر کے جی رہا ہے یا محض زندہ ہے؟ فرق ہے دونوں میں. دیکھیے, زندہ رہنے میں اور زندگی کو جینے میں, زندگی سے ناخوش شکایتوں کے ڈھیر پر کھڑے لوگوں کو اطمینان دے سکتی ہے. خوشی سے ناراضگی اختیار کر لینے والوں کو کیسے دوبارہ جینے پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے آس پاس لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ زندگی بوجھ ہے, زندگی فضول ہے, زندگی سنگ دل ہے, زندگی قاتل ہے, زندگی بڑی ظالم ہے, زندگی بڑی مشکل ہے, زندگی کتنی کٹھن ہے, زندگی بے حد دشوار ہے, اور زندگی میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہی؟ پہلے آپ بتائیے, آپ نے سنا کبھی کسی سے یہ؟ جی بالکل. لوگ تو کہتے ہیں ظالم زمانہ, زمانہ بڑا ظالم ہے. تو یہ کون لوگ کہتے ہیں, کن کا ہوتا ہے جو زندگی سے روٹھے ہوتے ہیں؟ اور اگر آپ کا زیادہ تر وقت انہی خیالات کے مالکان کے ساتھ گزرتا ہے, یا آپ باقاعدگی سے اس ماحول کا حصہ رہے ہیں جہاں اس طرح کے اعتماد شکن جملوں کی تکرار ہے, تو اس بات کے قوی امکان ہے کہ آپ بھی اس نعرے کے اسیر بن چکے ہوں گے کہ زندگی ان فیئر ہے. یعنی جیسے لوگوں میں آپ رہتے ہیں نا, آپ ویسے ہی سوچتے ہیں. دکھی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی دکھی ہو جائیں گے, اور نیگیٹو سوچ کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی زندگی میں بھی نیگیٹیوٹی آ جائے گی. اور ایسے ہی ہوتا ہے پھر. لوگوں کی اکثریت ہر لمحے یہ ثابت کرنے پر تلی نظر آتی ہے کہ زندگی نے ان کے ساتھ کس قسم کا کھیل کھیلا ہے, زندگی نے ان کے ساتھ کہاں کہاں وفا نہیں کی, زندگی نے کس کس مرحلے پر ان کی امیدوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, ان کے ارمانوں کا خون کر دیا. جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہوا ہی نہیں, اور جو ہوا میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. آج بھی ایسے جملے بولتے ہوئے کئی لوگ آپ کے ذہنوں میں آئیں گے. جو میں سوچتی تھی وہ کوئی نہیں ہوا, اور جو ہو گیا وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور دکھوں کی تصویر بنے ہوئے ایسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہی تو کہتے ہیں آپ, زندگی فیئر ہے ہی نہیں, زندگی ان فیئر ہے. کرہ ارض پر موجود مختلف لوگوں کا زندگی کے ساتھ تجربہ مختلف ہونے کی وجہ بھی یہی ہے. سب لوگوں کو ایک سے حالات کہاں نصیب ہوتے ہیں؟ ہر انسان کی صلاحیتیں, خوبیاں, ماحول, امکانات, حادثات, پریشانیاں, مواقع, حالات, زندگی سب کی پلیٹ میں ایک ہی جیسا, ایک ہی جتنا, ایک ہی وقت میں, ایک ہی ہاتھ سے, ایک ہی رفتار سے, ایک ہی انداز سے, ایک ہی لمحے میں کب ڈالتی ہے؟ سچ ہے نا, چار بچے بھی ہوں گے نا ایک ماں کے, تو سب کا نصیب فرق ہے. کوئی موٹا, کوئی پتلا, کوئی لمبا, کوئی پیسوں میں کھیلتا ہے تو کوئی غربت میں کھیلتا ہے. یہ تو ہم سب دیکھتے ہیں دن رات. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زندگی انفیئر ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر انسان کی پلیٹ کا سائز بھی مختلف ہوتا ہے. آپ کہیں گے پلیٹ کا سائز, کئی لوگوں کے پاس تو پلیٹ ہی نہیں ہے. کچھ کے پاس اس کے برعکس بڑے بڑے ڈونگے ہیں, پراتے ہیں, شاید دیگے. دوستو آپ درست کہتے ہیں, زندگی کس کو کیا دیتی ہے وہ سب کے لیے فیئر نہیں ہے. اللہ کی اس کائنات میں سب برابر نہیں ہے, سب کے ساتھ ہونے والے واقعات برابر نہیں ہیں, سب کے صدمات برابر نہیں ہیں, سب کے حادثات برابر نہیں ہیں. مجھے مزید قائل مت کیجئے, میں پہلے ہی مان چکا ہوں کہ زندگی فیئر نہیں ہے. لیکن ساتھیوں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہے؟ زندگی فیئر نہیں تو کیا ہوا, خوبصورت تو ہے. خوبصورت خاک خوبصورت ہے زندگی, ہر روز حالات کی تیز دھار تلوار کاٹ رہی ہے, हर रोज इरादे टूट रहे हैं, हर रोज जिल्लतें, मायूसियां, नाकामियां घेरा तंग कर रही हैं, और आप कहते हैं कि जिंदगी खूबसूरत है। हो सकता है आपने मुंह बना के कहा हो। ना दुखी होता है ना वो कहता है ये सब झूठ है, ये इनको बस बातें करनी आती हैं। हो सकता है कि जिंदगी ने आज तक आपके ख्याल में आपके साथ अच्छा सलूक ना किया हो, लेकिन इस चैप्टर को ख़त्म करने तक मुझे यकीन है कि मैं आपको कायल कर लूँगा कि ज़िंदगी खूबसूरत है, बिल्कुल इसी तरह जैसे शुरू में आपने मुझे कायल कर लिया कि ज़िंदगी अनफेयर है। यहाँ से ये सीखिए कि किसी को अपनी बात मनवानी हो ना तो पहले उसकी मान लें। बाज़ वक़्त कोई अपने दिल में 10 बातें लेके हमारे पास आता है ना, तो हम उसकी एक नहीं सुनते और अपने मशवरे देते हैं। सोने जैसे भी मशवरे देंगे ना, वो कहेगा अपने पास रखो, मैं कुछ सोच रहा हूँ तुम और कुछ सो रहे हो, मैं कुछ कहती हूँ तुम कुछ कहते हो। एक दफ़ा अगले की सुनो, यस ओके ठीक फाइन इस ठीक ठीक। जब अगले का जहन खाली हो जाए ना 15-20 मिनट बोलकर, फिर आप क्या आपने कह लिया, सोच लें कोई और तो नहीं बात दिल में, नहीं अच्छा जी ठीक है, अब आप बोले थे तो मैंने सुना, अब मैं बोलती हूँ आप सुनेंगे। ये है बेस्ट तरीका काउंसलिंग का, और हम दिन रात इसी पे अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मसले हल करने की कोशिश भी करते हैं और उनकी सुनते सुनाते हैं, क्योंकि जब तक आप सुनाने वाले हैं आप सुनेंगे नहीं। तो ज़िंदगी में ये गहरा असूल सीख लीजिए, किसी की बात पहले सुन लेना, उसको मुतमईन करना होता है। तो आप कह मान लिया जी ज़िंदगी मुश्किल है, जालिम है, कठिन है, दुश्वार है, इंसाफ नहीं, लेकिन अब आप सुनिए कि ज़िंदगी खूबसूरत कैसे है। बस ज़रा सी ऐनक बदलनी पड़ेगी, देखने का अंदाज, सोच का जाविया बदलना होगा। अनफेयर दिखने वाली बोझ ज़दा ज़िंदगी खूबसूरत दिखने लगेगी। मैं ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ, इसलिए कि ज़िंदगी के 24 साल मैं भी ज़िंदगी को अनफेयर ही समझता था। ज़िंदगी मुझे बोझ दिखाई देती थी, अनफेयर लगती थी, हर लम्हे दूसरों से मुबासना करके मैं खुद को तकलीफ़ देता रहा, दूसरों के मुकाबले में मैं खुद को हकीर समझता रहा। मुझे हर वक्त ये ख्याल डसता रहा कि दूसरों के पास जो कुछ है वो मेरे पास क्यों नहीं है। मैं ज़दा ख़ानदान में पैदा हुआ, यह अनफेयर है। मेरी बाँ, अब आप इन सारी बातों को सुनते वक्त सोचिए कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना, जो बातें आप बोलूँगी ना इसको सुनते वक्त आपने अपने हकायक लिखने हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कहिए जिएगा ठीक है कोई मेरे जैसा और भी है, और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे हालात तो इससे बहुत अच्छे हैं। मैं एक गुर्बत ज़दा ख़ानदान में पैदा हुआ, यह अनफेयर है। मेरी माँ बचपन ही में मुझे अपनी मोहब्बत से महरूम करके अबदी नींद सो गई, अनफेयर है। मेरे माशी हालात से लेकर जज्बाती सदमात तक हर चीज़ मुझे ज़िंदगी के अनफेयर होने का यकीन दिलाती रही। लोग कहते हैं ना इमोशनली हम बहुत टॉर्चर किए जा रहे हैं, हम तो बस महरूम है हर खुशी से। जिस्मानी खद्दोहाल से शक्लो सूरत तक, सलाहियतों के जायज़े से लेकर आगे बढ़ने के मौक़े तक, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर सिविल सर्विसेज एकेडमी तक, जंग अखबार की कैंटीन से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों के इंटरव्यूज तक, हर जगह जिंदगी अनफेयर लगी। समाजी स्टेटस से लेकर असर सूख तक, लिबासों गुफ्तार से लेकर जिंदगी की आसाइशों तक, लाइफस्टाइल से लेकर रहन सहन तक, मैंने जिंदगी के अनफेयर होने की गवाही पाई। फिर साबित ये हुआ कि ज़िंदगी बहुत अनफेयर है। लेकिन दोस्तों आपको नहीं लगता इन सब के बावजूद ज़िंदगी खूबसूरत है? हो सकता है आपको मेरी इस बात पर गुस्सा आ रहा हो, आपको ज़िंदगी के अनफेयर होने के अलावा कुछ और दिखता ही ना हो। दो कैफियत इंसानी जहन में कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, एक है शुक्र की और दूसरी है शिकायत की। इसको बड़ा बड़ा करके लिखिए, शुक्र की कैफियत और शिकायत की कैफियत, जिसको मैं अपनी ज़ुबान में कहूँगी कि शुक्र वर्सेस शिकायत। चाहें तो पेज पे दो कॉलम बना लें, एक तरफ शुक्र और दूसरी तरफ शिकायत। क्या होगा फ़र्क? अगर आप शुक्र करेंगे तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते, और अगर आप शिकायत करेंगे तो फिर आप शुक्र नहीं कर सकते। जब हम शुक्र की कैफियत में होते हैं तो शुक्र वाली चीज़ों की फहरिस्त इतनी लंबी हो जाती है कि हमारे जहनों में गुंजाइश ही नहीं बचती कि हम किस चीज़ की शिकायत कर सकें। सच है कि नहीं? तो अगर आपको ज़िंदगी से और लोगों से शिकायतें हैं ना तो शुक्र कीजिए। शिकायती रवैया इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता। सब खूबियों पे पानी डाल देती है इंसान की ये खूबी कि वो शिकायती रवैया अख्तियार करे। हकायक बताने वाला अंदाज अच्छा होता है, शिकायतें लगाने वाला अंदाज अच्छा नहीं होता। शिकवे शुक्र में बदल जाएं तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। आप कह लीजिए कि शिकायती रवैया हो तो जिंदगी अनफेयर बनती है, और शुक्र का रवैया हो तो जिंदगी खूबसूरत बनती है। जिंदगी अनफेयर हो सकती है, मैं अगरचे इससे मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए, आपकी मोहब्बत में थोड़ी देर के लिए मुत्तफिक हो जाता हूं। लेकिन सच ये है कि जिंदगी एक पैकेज है। बनाइए जरा अपनी कॉपी में एक पैकेज। पैकेज में बहुत कुछ होता है ना, इसमें सब कुछ है, लेकिन सब चीजें आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो सकती। कभी आपने कोई प्लेटर मंगवाया हो खाने में, तो आप कहते हैं हाँ चिकन मैं ले लूंगी, सैलड ले लूंगी, लेकिन ये मायनीज सॉस मैं नहीं लूंगी। तो कहते हैं आ रहा है ना अंदर प्लेटर के, आप ना खाइएगा, बाकी ले लो। पैकेज है जिंदगी। पसंद की चीजें उठा लें, फायदे की चीजों से फायदा उठा लें, बाकियों का शिकवा ना करें। आप कोई काउंटर पे जाके मारे, ये क्यों डाली मायनीज आपने, आपको नहीं पता मैं नहीं खाता, आपको नहीं पता ये कितनी खराब है, आपको आपको तो कहेगा लीजिए 1 मिनट, वो उसमें वो छोटी सी कटोरी उठा के अंदर रखेगा, कहेगा आप बोलिए, आप कहेंगे आप सब ठीक है। तो ये काम तो आप भी कर सकते थे। बहुत सारे लोगों को जीने का ये गुण नहीं पता। घरेलू जिंदगी, इज्तमाई जिंदगी, मुआशी मुआशरती जिंदगी और दीन के कामों की जिंदगी में ये बुनियादी असूल याद रखिए कि शिकायतें करने की बजाय अगर आप उसका हल पेश करें, फिर बाद में कहें कि हल ये है और इस हल की जरूरत इसलिए पेश आई कि प्रॉब्लम ये था, तो लोग आपको मोहसिन कहेंगे। और अगर आप हल पेश किए बगैर सिर्फ हकायक भी बयान कर दें तो वो शिकायत ही लगती है। दोस्तों जिंदगी अनफेयर हो सकती है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। इसको खूबसूरत रहने दीजिए, इसको खूबसूरत तरीके से गुजारिए और खूबसूरती ढूंढिए। जिंदगी की खूबसूरती ढूंढने से मुश्किलात कम हो जाती हैं, और शुक्र की कैफियत शिकायत के अंबार से दूर रखती है। जिंदगी अनफेयर है, बाकियों की निस्बत कुछ ज्यादा मेहरबान है। इसका ताल्लुक आपके साथ पेश आने वाले वाकयात और गिर्दो पेश के हालात से नहीं, बल्कि आपके बोलिए सोच के अंदाज से है। पीछे बात जो गुजरी है, जिंदगी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, तो फिर इस तोहफे को कुछ लोग अपने लिए जहमत क्यों बना लेते हैं? अपनी सोच के अंदाज की बदौलत लिख लें, तोहफा है ये अल्लाह का। सोच बदलेंगे तो खूबसूरत लगेगा, और सोच टेढ़ी होगी तो उस तोहफे में भी नक्स निकलेंगे। हमें लगता है कि दूसरे ज्यादा खुशकिस्मत हैं, वो अल्लाह मियाँ के ज्यादा लाडले हैं, इन पे जिंदगी की नजरे करम कुछ ज्यादा है। अगर इनसे पूछें तो वो खुद को एताब का शिकार समझते हैं। एताब कहते हैं डांट, अजाब होता है पकड़, और एताब डांट डपट डरावे देना। न शुक्रियों का पलंदा लिए फिर रहे होते हैं, अलबत्ता इनकी निगाहों में कोई और ज्यादा फेयर जिंदगी गुजार रहा होगा, जिसका दर हकीकत वही हाल होगा जो इनका रहता है। जिंदगी हमें क्या देती है, इसे हम बदल नहीं सकते। जाए पैदाइश, मादरी जुबान, माँ बाप, बदलने का इख्तियार हमारे हाथ में कहाँ है? बदल सकते हैं, और बदलना चाहते हैं? कोई भी नहीं। आप चाहते हैं किसी स्पेनिश फैमिली में आप पैदा होते, आप उर्दू ना बोलते, पंजाबी ना आती, है कोई? माँ बदलना चाहते हैं, कोई खूबसूरत सी मॉडर्न औरत ले लें, टपक टपक चलती परस में लिए हुए खूबसूरत गोरी माँ ले लें, कोई और दौलतमंद सेहतमंद हेल्दी बाप लेना चाहते हैं? कोई हम में से अपना बाप बदलना चाहे? हमें विरसे में कैसे बाल, कैसी रंगत, कैसे रुझानात, कैसी बीमारियां, क्या सलाहियतें, क्या कद काठ, क्या खूबियां, क्या खामियां मिली हैं हमें, ये इख्तियार ही नहीं, अलबत्ता जिंदगी ने जो हमें दिया इसे अपने फायदे में, अपने हक में, जिंदगी सवारने में इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में है। चले, कितने लोग हैं जो अपने बाल बदलना चाहते हैं? सारे बदल लेंगे, भूरे गोल्डन बाल। आंखों का रंग कितने लोग चाहते हैं नीला होता? तो क्या मुश्किल है, आप 5 रुपए के लेंस लगा ले नीले रंग के। कितने चाहते हैं कि वो गोरे होते। आप में से किसको शौक है गोरे होने का? ये भी आपको ही है, औरों को नहीं है। तो आप गोरी होती लगे नहीं, इस्लाम से दूर होती तो वो गोरा रंग आपको नहीं खुशी देता। किसका दिल करता वो लंबा होता या लंबी होती पतला होता? ये तो मुझे पता किस किस का दिल था। ये तो सब की ख्वाहिश है, अंडे और टमाटर और ऑरेंज है, यही खा के बैठे होंगे ना आज बहुत सारे लोग। आप देखिए कि हम जो भी कर लें लेकिन हम एक खास हद से ज्यादा नहीं बदल सकते। ये लिख लीजिए, जिंदगी में कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता। बस जिंदगी के गमों को एक्सेप्ट कर लें, मसाइब को एक्सेप्ट कर लें, बीमारियों को एक्सेप्ट कर लें, जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट कर लें, जिद्दी बच्चों को एक्सेप्ट कर लें, ताने देने वाली सासों को एक्सेप्ट कर लें, काम ना करने वाली बहुओं को एक्सेप्ट कर लें, बोझ पड़ने वाले रिश्तों को एक्सेप्ट कर लें। बड़ा सा करके अपने नोट्स में लिख लीजिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जिस दिन आप अपनी जिंदगी के मामलात को कबूल कर लेंगे ना, आप खुश होंगे। फिर आप रोएंगे तो नहीं, फिर आप मुस्कुराएंगे। आप कहेंगे आज मैंने एक और चीज़ पे फतह पा ली, मैं जीत गई। आज मैंने एक और नाक चीज़ को अल्लाह की रजा के लिए खुशी से कबूल किया। फिर स्माइल, इत्मीनान, मुस्कुराहट, मुस्कान, आपका चेहरा खिला रहेगा। आपके मैं ना खुश रहूं, मैं दुखी रहूं, मैं बीमार हूं, मैं ऐसी नहीं हो सकती। फिर आप महसूस करेंगे कि आपको जिंदगी खूबसूरत लगेगी। हम चाहें तो उम्र भर जिंदगी के अनफेयर होने का शिकायत करते गुजार दें, मर्जी आपकी चले, सारी जिंदगी यही काम कर लें। चाहें तो इन फेयर दिखने वाली चीजों, बातों, खामियों, कमजोरियों को अपनी ताकत बना लें और इन लोगों से कहीं आगे निकल जाएं जिनके साथ आपके ख्याल में जिंदगी कुछ ज्यादा मेहरबान है। मैं आपको ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि मैंने खुद भी यही किया। अपनी जिंदगी के कई साल शिकायतों के ढेर पे बैठा, जिंदगी के अनफेयर होने का रोता रोता रहा, बचपन से जवानी तक। सच तो यह है कि मेरे पास किसी भी दौर में वो सब नहीं था जो बाकियों के पास था। मुझे अपने पास महरूमियों के सिवा कुछ दिखता भी नहीं था, यदि कुछ नहीं था सिवाय महरूमियों के। महरूम हराम से, यानी चीज हराम हद तक मेरे पास नहीं थी। मैं उस चीज से दूर था, उस चीज का मेरी जिंदगी में कोई दखल ही नहीं था। बचपन में दूसरे बच्चों के पास खिलौने थे, मेरे पास नहीं थे। इनके पास अच्छे कीमती कपड़े थे, मेरे पास नहीं थे। इनके पास नई किताबें, बैग, यूनिफॉर्म, जूते, कॉपी, पेंसिलें, ज्योमेट्री बॉक्स, साइकिल, मेरे पास कुछ भी नहीं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो कुछ था मेरे पास, इनमें से कुछ नहीं था। मुझे जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अनफेयर दिखती थी। आप इमेजिन करें जरा। और मुझे इस वक्त आयतें याद आ रही हैं सूरह दोहा की, मा वद्दक रब्बुक व मा कला। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अलम यजित का यतीम अनफावा व वजदा का दौलन फहदा व वजदा का आइलन फागना। देखिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे कीमती इंसान जिन चीज़ों से महरूम है, इसके बावजूद वो दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो मुझे आपको किसी दूसरे की बात से कोई नसीहत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अपने नबी को उसवे हसना बना ले, माँ बाप तो उनके पास भी नहीं थे। फिर एक दिन आया जब मुझे एहसास हुआ कि इनके पास जो कुछ है वो तो कई और लोगों के पास भी है, लेकिन जो मेरे पास है वो तो बस मेरा ही है। अनफेयर दिखाई देने वाली जिंदगी ने ऐसा रुख फेरा कि बोझ ज़दा जिंदगी तोहफों से लद गई। हर खामी, हर कमजोरी, हर महरूमी अल्लाह की तरफ से एक अनमोल अतिया, तोहफा और जजा दिखने लगी। वालदेन का गरीब होना, खानदान का बड़ा होना की नासूदगी, नौजवानी की अजियतें, सब किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा लगने लगी। कि अल्लाह ने मुझसे कोई काम लेना, लिख लीजिए, अल्लाह कई महरूमियों में डालता है ताकि बंदे से कोई एक काम ले। अल्लाह ने एंड पे ना हर चीज बैलेंस करनी है। कुछ को खुद प्लेट में रख के सब कुछ देता है, लेकिन बाद में आखिरी जिंदगी में महरूम हो जाते हैं वो। और कुछ को शुरू में कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो मेहनत करते हैं तो अल्लाह उनको दे देता है। वालदैन का गरीब होना और ख़ानदान का बड़ा होना, बचपन की नासूदगी, नौजवानी की अजियतें, सब किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा लगने लगी। सर बेख्तियार सजदे शुक्र के लिए झुक गया, जहन कुदरत की प्लानिंग का रह गया। मेरी ज़िंदगी में अनफेयर दिखने वाले वाक़या तो हालात में से एक भी वाक़या रूनमा न होता तो मैं आज ये किताब न लिख रहा होता। ज़िंदगी के 24 सालों में पेश आने वाले हर वाक़े, हर नाकामी, हर मायूसी, हर महरूमी, हर तंग दस्ती, हर जिल्लत, हर नामर्दी, हर परेशानी ने मेरी मौजूदा ज़िंदगी को सींचा था। ये लिख लें, कितनी महरूमियाँ जमा होती हैं, इंसान की शख्सियत निखरती है, फिर वो करने के काबिल होता है। और जितने आराम और नेमतों और आसाइशों में पल जाते हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल ही ऐसे ही वक्ती और सतही ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं कि मेरे पास नाइक के जूते क्यों नहीं, तो मेरे पास फुला जैकेट क्यों नहीं, तो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं, तो मेरे पास आईफोन 7 क्यों नहीं, और मेरे पास ये क्यों नहीं है। वो आम लोग होते हैं, लेकिन जो मेहनतों और मुशक्क़तों और मुसीबतों में पलते हैं ना, वो संजीदा बच्चे होते हैं, उनके अंदर ज़िंदगी की हकीकत होती है। मेरी मौजूदा कामयाबियों और ख्वाबों को सच कर दिखाने में सही वक्त पर सही तरीके से अपना किरदार निभाया था। बड़ी देर से एहसास हुआ कि ज़िंदगी को अनफेयर साबित करने वाला हर वाक्या मुझे दरअसल कुछ सिखाना चाहता था। मेरे सब्र, हौसले, अज़्म और साबित कदमी को आजमाने वाली हर शिकस्त बिलाशुबा मेरी तैयारी का हिस्सा थी। मैं फिर बोलती हूँ, मेरे सब्र, हौसले, अज़्म और साबित कदमी को आजमाने वाली हर शिकस्त बिलाशुबा मेरी तैयारी का हिस्सा था। कुदरत मुझे बार बार नाकाम करके, मेरे ऊपर सैकड़ों दरवाजे बंद करके, मुझे लम्हा ब लम्हा इस एक दरवाजे की तरफ धकेल रही थी, जिसके खुलने के बाद मेरी किस्मत खुल गई। मेरी हर नाकामी, परेशानी, आजमाइश, महरूमी जो इस लम्हे में मुझे सर पर लटकती तलवार थी, आज पता चला मेरी साथी थी, मेरी राहबर थी। आज बरसों बाद मैं अपनी किसी नाकामी, किसी बेबसी के किसी लम्हे को पीछे मुड़ के देखूं तो इस लम्हे पर अफसोस करने की बजाय दिल शुक्र के जज्बे से भर जाता है। आपको बड़ी हैरतनाक बात लगेगी, लेकिन आज किसी नाकामी को याद करके मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं उस इंटरव्यू में फेल हुआ। सच्ची बात है, जिंदगी में बहुत सारी नाकामियाँ हमारी कामयाबियों का दरवाज़ा खोलती हैं। और इस बात को पढ़ के बिल्कुल मैं अपने दिल पे लेके इसको सोच रही थी कि जैसे बचपन से एक ही ख्वाब देखा था मैंने और मेरी दोस्तों ने कि हमने डॉक्टर बनना है। और वो दिन आज भी नहीं भूलता कि जब हमारे ही जितने नंबर ली हुई हमारी दोस्त को आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखला मिल गया 19-20 के फ़र्क से, क्योंकि उसके मामू जर्नैल थे तो उनकी भतीजी को आर्मी कॉलेज में दाखला मिल गया। और हम सहेलियां यूं टसवे बहाती थी, कोई हमारा भी मामू होता और वो जर्नैल होता तो हम भी आर्मी कॉलेज में जाते और फ़ॉन कलर की साड़ी पहनते। ये शौक था हमारा आर्मी कॉलेज में जाने का कि वहाँ की डॉक्टर्स का यूनिफॉर्म फ़ॉन, ये जैसे आपके स्काफ है ना, ऐसी साड़ी थी उनका और ऊपर लॉन्ग, ऐसे लगता था जन्नती लोग हैं जिनको ये मिल जाए। और आज मैं सोचती हूँ अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, पता नहीं मैं भी उतनी दुनियादार हो जाती या मैं अपने प्रोफेशन में उसमें बहुत डेडिकेट हो जाती, को बुरा तो नहीं है। आज भी डॉक्टर्स काबिले सलाम है और उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही ऑन कॉल रहती है जैसे दीन के लोगों की होती है, लेकिन हो सकता है ये सोच ना मिलती, ये सुनहरियो ना मिलता जिंदगी को। हो सकता है वहाँ दिल काट काट के देख रहे होते लोगों के, यहाँ रूहें कटती हैं। कुरान क्या, ये भी तो रूहानी इलाज ही है ना। तो बहुत सारी नाकामियाँ इंसान को बाद में अल्लाह का शुक्र करने पे तैयार करती हैं कि अल्लाह वो कमी मिली तो कुछ तूने दिया। कुछ अरसे पहले मैं नशिप टीम के साथ टक टक डॉलर की ट्रेनिंग करवा रहा था। इस ट्रेनिंग में नेस्ले के मैनेजिंग डायरेक्टर डोनाल्ड स्मिथ, इनके टॉप के 16 लोग मौजूद थे। ट्रेनिंग के अख्तिताम पर इन सब ने उठकर मेरे लिए तालियां बजाई। इस लम्हे मेरी आंखों में खुशी का एक आंसू झिलमिला गया। बहुत साल पहले जब मैं हर रोज नेस्ले की फैक्ट्री में मजदूरी की तलाश में बस की छतों पर बैठकर जाता था और भूखा प्यासा धुतकार दिए जाने के बाद वापस आता था, तब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं नेस्ले जैसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत इनके टॉप मैनेजमेंट को ट्रेनिंग या कोचिंग दूंगा। इनके इसरार पर जब मैंने बार बार फैक्ट्री में नौकरी के लिए रिजेक्ट होने की बात बताई तो इनमें से अक्सर लोगों की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। आइन डोनाल्ड ने मुझे मुस्कुरा के देखा और बोला, अच्छा हुआ हमने आपको इस वक्त नौकरी नहीं दी, वरना आज यहाँ आप हमारी ट्रेनिंग ना कर रहे होते। नौकरी करता उनके लिए तो क्या करता, दूध के डब्बों पर शायद ढक्कन लगा रहा होता, एक डब्बे से को उठा के उधर रखता या कुछ और बड़ा काम करता। लेकिन इंसानों को ट्रेन करना, आपको तो खुद नहीं पता इस वक्त आपके साथ क्या हो रहा है। ये सेल्फ ग्रूमिंग, लाखों रुपया लगाते हैं लोग इस पे, हजारों डॉलर के कोर्सेज ऑफर करते हैं अमेरिका में लोग सिर्फ ये कोर्स करने के लिए जो इस वक्त आप कर रहे हैं। सेल्फ ग्रूमिंग, ये आपकी कामयाबी है या नाकामी है, या आपकी खुशी है या आपकी महरूमी है। कल हम किसी जगह थे और आमतौर पे आप भी जब भी कभी यहाँ पब्लिक रिलेशन वाले लोग, जैसे मिसाल है कि कोई क्लाइंट है, कोई ऑफिस में बैठा है, उनसे मिलते हैं, आपको ये कैसे मिलते हैं, हाय हेलो हाउ डूइंग फाइन, फोन उठाए हेलो हाउ। तो मैं सोचती थी ये नॉन मुस्लिम, अल्लाह को भी नहीं शायद मानती, इतनी खुश क्यों है? क्योंकि उसने ये स्किल सीखी हुई है। कस्टमर डीलिंग क्या है? अब आप देखिए मुंह ढीला करके आधे परेशान आधी आंखें खुली और रिसेप्शन पे बैठे हैं, ऑफिस में कोई झांके और आपको देख के वापस आ जाए, अंदर कोई खतरनाक चीज बैठी हुई है। आज हमारा तो अल्लाह माफ करे ये हाल हो गया। दीनी इदारों में तो लोग कदम नहीं रखते कि अंदर से आवाज आनी है, कौन है, कोई नहीं इधर भाग जाओ। यकीन करें ऐसा है हाल। चीजें बिल्डिंगें बहुत खूबसूरत, लेकिन हम इंसान ठोर है। ये बातें जो आपको बता रही हूँ, यकीन करें अगर आपने इसको दिल पे लिख के अमल में ले आए, कापियों पे नहीं दिल पे, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इस पैगाम तो पहले ही बड़ा खूबसूरत है। मैसेज में तो किसी को शक नहीं है ना, अल्लाह के कलाम से प्यारा पैगाम क्या है। लेकिन अगर हमारी छोटी छोटी कमियाँ बेशियाँ दोनों स्किल्स पैदा करें, या किताब आपको खुश रहना सिखा रही है, सर उठा के जी क्यों दुखी है, गम क्या पड़ गया आपको, क्या अल्लाह के नबी से ज्यादा दुखी हैं आप? आपके ऊपर किससे ज्यादा मुसीबतें पड़ी हैं? हजरत आसिया से ज्यादा आप दुखी हैं? हजरत सारा से भी दुखी हैं? आपको क्या मसला क्या पड़ गया? क्या आपके बच्चे छीन लिए गए अल्लाह के रास्ते में? आप उम्मे सलमा से भी ज्यादा दुखी हैं? एक एक मिसाल सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन की सूरत में हमारी आंखों के सामने खुल जानी चाहिए अपने हालात पर रोते हुए। कमी एक ही है, हमें खुश नहीं रहना आता। हम दुनिया की नेमतों को अपना हक समझते हैं, जरा सा काम होता है हम कहते हैं देखा अल्लाह ने हक नहीं दिया, और आप एक छोटा सा चावल का दाना मुंह में डाल के अल्लाह मेरा हक तो नहीं था कि ये चावल मेरे दांत के नीचे जाता, ये तूने दे दिया, ये शुक्र है। कुछ ना और सीखें, अगर यहां से आप शुक्र करना सीख के जाएंगे ना, तो कम अज कम आपके घर वाले हमें दुआएं देंगे कि इनके इस नेगेटिव रवैये ने घर का भी माहौल अजीरन किया हुआ था। यकीन करें हम दुखी होते हैं तो अकेले कोई नहीं होते, दूसरों को भी दुखी करते हैं। थोड़ी देर कहीं आए तो उनको तो जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं, उन मर्दों का क्या हाल होता होगा, और उन बीवियों का क्या हाल होता होगा जिनको ऐसे मर्द मिल जाएं, और उन बच्चों का क्या हाल है जिनकी माँ को कभी खुश होना ही नहीं, और उन बच्चों का क्या कहना जिनको माँ बाप की कोई नेमत नेमत नहीं लगती। तो जिंदगी में खुश रहना सीखे, जिंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू बदल के देखिए, अपनी जिंदगी के कौन से पहलू आपको बोझ दिखाई देते हैं, सवाल लिखिए। चंद सवाल आपकी सोच बदलेंगे, दोबारा सोचिए। अपनी जिंदगी के कौन से पहलू आपको बोझ दिखाई देते हैं? पहलू क्या होते हैं? एंगल्स। मसलन इसको समझिएगा, आपकी जिंदगी के डिफरेंट एंगल्स क्या हैं? एक तो आपका ये स्कूल ही है कि यही तो नहीं बोझ लगता, ये वॉलंटियर वर्क, ये जिम्मेदारी बोझ है। लिखिए बैठ के, मुझे क्या बोझ लगता है। घरदारी, कुकिंग, स्टिचिंग, सिलाई, कुछ भी। दूसरा सवाल खुद से कीजिए, किन बातों पे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है? अगर आप दुखी हैं तो जरूर आप शर्मिंदा होंगे, तो किन बातों पे आप शर्मिंदा हैं? फिर किन नाकामियों को आप दूसरों से छुपा के रखना चाहते हैं? बताना नहीं चाहते कि दूसरों के सामने खुल गई तो मेरी तो इज्जत ही चली जानी है जो थोड़ी सी भी है। फिर अगला सवाल, किन बातों में आप खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं और क्या चीजें आपको महरूमी लगती हैं? सोच ले, आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स लिखिए, अपने आप को नाकेदाना नजर से लिखिए। मेरे अंदर कमी क्या है? क्या मेरी आंख नहीं है? क्या मैं लंगड़ी हूं? क्या मेरा एक हाथ छोटा और एक बड़ा? क्या मेरे आधे सर पे बाल है आधे पे नहीं? सर में दर्द है ना, सर तो है ना, दिमाग में दर्द तो नहीं है ना, बुखार है ना, कैंसर तो नहीं है ना, हाथ में दर्द है ना, दिल में दर्द तो नहीं है ना, बैठ नहीं सकती, चल तो सकती हूं ना, चल नहीं सकती, खड़ी तो हो सकती हूं ना। हर एक सोचे, अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमारी सोच सीधी हो जाए। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी पे गौर करे तो उसको ये बात समझ आ सकती है कि अल्लाह ने उसको दिया क्या कुछ है। हम क्या सोचते हैं, लिया क्या, महरूम किससे हूँ? अपने से नीचे देखेंगे तो आपको हर बंदा अपने से ज़्यादा दुखी लगेगा। वो एक कहानी किसी ने सुनाई थी ना कि एक दफ़ा कुछ लोग जमा हुए एक जगह, तो सारों का ख्याल था हम दुखी हैं, सारे एक जगह जमा हो गए, मीटिंग हुई, बैठे गेट टुगेदर, कहने लगे चलो हम ऐसा करते हैं अपने दुख लेते हैं। अंदर से पूछा, कहा बस बड़ा दुखी हूँ, आंखें नहीं हैं, कुछ देख ही नहीं सकता, ये भी कोई ज़िंदगी है? दूसरा शख्स लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, उसने कहा कि देखो तुम तो देखते नहीं हो ना, तो मैं तो देखो कितना बदनसीब हूँ, देखता हूँ फिर भी चल नहीं सकता। कहा अच्छा क्या करें? कहने लगा कि फिर ऐसा करते हैं अपना दुख बदल लेते हैं, टांग मुझे दे दो और मेरी टांग तुम ले लो। अब क्या हो गया, स्विच हो गई कहानी, लंगड़ा अंधा और अंधा लंगड़ा बन गया। अब क्या हुआ, अगर दोनों खुश थे? इसी तरह बाकियों ने भी बदल लिए दुख सुख, तो आखिर में फिर क्या नतीजा निकला? कहने लगा मुझे मेरा रख वापस करो, मेरा बेहतर था। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्वुसअहा। कई दफ़ा आप अपने प्यारों में, रिश्तेदारों में, लोगों को तकलीफ़ों में देख के कहते हैं अल्लाह ये बर्दाश्त कैसे कर रही हैं, अल्लाह ये कैसे सब्र करेंगी? लेकिन आप उनसे पूछें ना तो वो क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है थोड़ी आई है मेरे ऊपर। वो मुतमईन होते हैं। आप एक कड़वी गोली नहीं खा सकते किसी को, आप इंजेक्शन लगवाता देखते हैं, आपने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया किसी को, आप ऑपरेशनों में जुता हुआ देखते हैं फिर भी वो खुश है। आराम की गरानी में कमी क्या है, फिफड़े नहीं, दिल नहीं, दिमाग नहीं, जिस्म के अंदर कोई कमी है, सोच नहीं, हमारे अंदर इमोशंस नहीं, सोच की ताकत नहीं, क्या कमी क्या हमारे अंदर, कुछ भी नहीं, तो फिर खुश रहे, फिर दुखी ना रहे, क्योंकि जिंदगी इतनी कीमती है, ये दुखी रहने के लिए नहीं है। कब्र में चले जाएंगे अपने दुखों के साथ, करके कुछ नहीं जाएंगे। तो जिंदगी को कभी अनफेयर जिंदगी ना कहें, और आप बैठ के लिखेंगे तो फिर फायदा होगा, वरना नहीं फायदा होगा। और जब आप ये फहरिस्त मुरतब कर चुके तो मेरी कहानी को जहन में लाइए और सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परेशानियां, कमजोरियां, खामियां और महरूमियां आपकी असल ताकत है। यानी महरूमियां आपकी ताकत है, क्योंकि एनर्जी मिलती है बंदे को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज बोझ लगने वाली ये सच्चाइयाँ कल को आपके लिए तोहफे का दर्जा इख्तियार करने वाली हैं। आपको जैसे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल इस तरह मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मजदूर का बेटा होना कभी मेरे लिए शर्मिंदगी से ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। लेकिन आज कौमी टीवी पे दिन में दर्जनों बार कहता नजर आता हूँ, अपने मकसद को पाने के लिए वॉल चॉकिंग भी की। वॉल चॉकिंग समझते हैं, ये दीवारों पे जो लिखते हैं आमिल नजूमी, हाँ, और वो पेडस्टल फैन की मशहूरियाँ। कभी आप बाय रोड सफ़र करें पंजाब में, सड़कों पे नुस्खे लिखे होते हैं दवाइयों के और आमिलों के और जादूगरों के और महबूब आपके कदमों में। अब एक शख्स जो कभी वॉल चॉकिंग करे, आज वो लोगों को जीना सिखाए, तो बड़ी बात है ना। फैक्ट्रियों में मजदूरी भी की, मजदूर का बेटा हूं, मैं क्यों झिझकता। जिंदगी बज़ाहर अनफेयर है, अगर मैदान में कूद जाएं तो जल्द ही एहसास होगा कि खेल के कवानीन, मुखालिफ टीम, तमाशाई, हत्ता कि एम्पायर भी अगर आपके खिलाफ हो जाए तब भी ये खेल खूबसूरत है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि हर वाक्य के पीछे परवरदिगार का एक मकसद होता है जिसे समझ नहीं पाते, इसीलिए शोर शराबा करते हैं, रोते हैं, मार धाड़ पर उतर आते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस मकसद को पा लेते हैं तो शिकायतें दुम दबा के भाग जाती हैं, इनकी जगह शुक्र ले लेता है। हम अपने बचपन पे हंसते हैं और हैरान होते हैं कि हम कुदरत की इस मसलहत को इस वक्त क्यों ना समझ सके। दोस्तों, आज जिस दुख ने भी आपको अफसरदा किया हुआ है, जिस नाकामी ने भी आपके अज़म को सरनगू कर दिया है, जिस महरूमी ने भी आपके एतमाद को खोखला कर दिया है, जिस शर्मिंदगी ने भी आपकी इज्जत नफ्स को दाव पे लगा दिया है, जिस मुफलसी, तंग दस्ती, परेशानी और उलझन ने भी आपको घेरा हुआ है, यकीन मानिए इसके पीछे कुदरत का एक राज है, मकसद है, मसलहत है। अल्लाह पर भरोसा कीजिए। जिंदगी के अनफेयर होने की शिकायत छोड़कर आगे बढ़ने की जस्तजू जारी रखिए। देखते ही देखते आपकी जिंदगी कामयाबियों, खुशियों और खुशहालियों से भर जाएगी। जिंदगी अनफेयर सही लेकिन है बड़ी खूबसूरत। अब आप बताइए आपकी जिंदगी कैसी है? कितनों को लगता है कि जिंदगी अनफेयर है? पहले लगता था, अब तो नहीं लगता। इंशाल्लाह दिन ब दिन आपको ये जिंदगी खूबसूरत लगेगी और आप महसूस करेंगे कि इसी में सबसे ज्यादा हुसन है।
बहुत ज्यादा, मैं तो कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहु ताला की बहुत ज्यादा नेमतें हैं जिनका हम शुक्र अदा, हक अदा नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा बचपन से लेकर आज तक, मतलब बुढ़ापे तक, बहुत ज्यादा।
देखिए, दीन इस्लाम का पहला लफ्ज जो कुरान में है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र जिंदगी का खुलासा है। और कई बार की कही हुई बात कि शुक्र शक्कर है, जैसे कड़वी चाय को शक्कर मीठा कर देती है, इसी तरह शुक्र कड़वी जिंदगी को मीठा कर देता है। शुक्र ले आएंगे ना तो आप सबसे खुशकिस्मत है। कभी भी लगे ना कि हम दुखी हैं तो अपने से नीचे वालों को देख ले, और कभी लगे कि हम बहुत अच्छे हैं तो अपने से ऊपर वालों को देख ले, और कभी ये लगे ना बहुत कुछ कर रहे हैं तो अपने से ज्यादा करने वालों को देख ले। महरूमियों को कमजोरी नहीं ताकत बना, और हम महरूमियों की वजह से जहनी, जिस्मानी, इमोशनली कमजोर होकर बीमार पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम नेकी के काबिल नहीं है। कमजोर लोगों पे हर बात का हमला होगा, मजबूत लोगों के ऊपर से पहाड़ भी गुजर जाए कहते फिर गुजर गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो ठीक हूं। छोटी छोटी बात पे अगर हम दुखी होंगे तो दीन का काम हम कभी नहीं कर सकेंगे। जी, इनको वो खत याद आ रहा है, शेयरिंग की थी आप लोगों के साथ कि कैसे एक शख्स अपने साल के गुजरने पे लिखता है कि इस साल में क्या क्या हुआ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, फिर उसको फ्रैक्चर लगा, फिर उसके बाद ये वो। तो फिर उसकी बीवी ने उन सारे वाक्यात को पॉजिटिव में लिखा कि इस साल हादसे का शिकार होने के बावजूद मेरा बच्चा बिलाखर ठीक हो गया, मेरी जॉब चली गई लेकिन मुझे कितना फारिग वक्त मिल गया। तो जिंदगी बस यही है, धुंधला शीशा है, आपको नजर नहीं आती उसकी हिकमत क्या है, तो इंतजार करें, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपके लिए उसको खैर करेगा। रेजिस्टेंस है, फाइट लगी हुई है, बस हम नहीं करेंगे, और जिस दिन कबूल कर लेंगे ना उस दिन आप कहेंगे अब हो जाए, फिर जो ना ये सिर्फ फाइटिंग है, और ये ऐसे में तकदीर पर ईमान में कमी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की कमियों को बेहतरियों में बदले और जिंदगी को अनफेयर समझने की बजाय जिंदगी की खूबसूरती को देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।